नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ठ प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम से अध्याय 30वां, और अध्याय का नाम है कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक क्रमांक है 4। जंतुर्वै भवेतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत्, तस्याम तस्याम सलभते निर्वृतिम् न विरज्यते। जन्तुर्वै भवेतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत् तस्याम तस्याम सलभते निर्वृतिम् न विरज्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। मेरे पीछे दोहराइए। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। तात्पर्य, शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलना मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका दूसरी है। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ नहीं पाता कि वह सुखी या दुखी है। यह आवरणात्मिका कहलाती है। यहां तक कि विष्ठा खाने वाला सूकर अपने में सुखी रहता है, यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि सूकर विष्ठा खा रहा है, कितना गरेत है ऐसा जीवन। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृतिम न विरज्यते। जंतु का मतलब होता है जीव। जीव को जंतु क्यों बोला जाता है? संस्कृत में जन धातु है, जन धातु में तृण प्रत्यय होता है, उससे जंतु शब्द बनता है। जंतु का अर्थ होता है जायते इति जंतु, जो उत्पन्न होता है, बार बार शरीरों को धारण करता है, बार बार उत्पन्न होता है, हर जगह प्रवेश करता है, इसलिए उसका नाम है जंतु, जायते इति जंतु। दूसरा अर्थ है जंतु का जनयति इति जंतु, णिच प्रत्यय करेंगे तो बनता है जनयति। जनयति मतलब पैदा करता है, वो भी खुद उत्पन्न करता है, खुद तो होता है फिर बाद में कुछ समय के पश्चात वो भी किसी को उत्पन्न करता है। इसलिए यहां पर कपिल देव, जो सभी आचार्यों का मत है इन सब के कमेंट्री इन श्लोकों पर इस 30वें अध्याय में, कि भगवान कपिल अपनी मां को सांख्य और योग का उपदेश करने के पश्चात वैराग्य इस शरीर से कैसे उत्पन्न होगा, इसके लिए यहां पर कम से 16 श्लोकों में उसका वर्णन करेंगे कि जीव किस प्रकार से अलग अलग योनियों में जाता है और जहां जहां जाता है वहीं वहीं सुख समझने लगता है। ऐसा करके यहां पर इन्होंने प्रारंभ कर दिया है प्रकरण को। तो इस श्लोक में जंतु मतलब जीव, इसके लिए कहा गया है क्योंकि जीव तब तक जंतु है। जंतु शब्द अधिकतर रूढ़ शब्द है पशुओं पर, सभी लोग जानते हैं कि अधिकांश लोग जंतु शब्द का प्रयोग पशुओं के लिए करते हैं, बोलते हैं जीव जंतु, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। जंतु शब्द मनुष्य से थोड़ा सा अंतर उत्पन्न करता है। जायते इति जंतु मतलब जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है, वो तो जंतु है, लेकिन कब तक जंतु है? जब तक उसके अंदर भगवत जो गुण है, भक्त के लक्षण प्रकट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो जंतु के तुल्य है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोक भूविभार भूता मृगा मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। मृग यानी भी जंतु पशु होता है। बोलते हैं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिस व्यक्ति का न विद्या है, विद्या का मतलब भौतिक नॉलेज नहीं कि बहुत कुछ जानकारी है बिजनेस के विषय में, साइंस के विषय में, ये अविद्या है। विद्या का मतलब होता है कि सा विद्या या विमुक्तये। वेद कहते हैं कि वह विद्या है जिससे जीव मुक्त हो जाता है, इस संसार से उसका वैराग्य पैदा होकर के भगवान में रति पैदा हो जाए, उसको विद्या बोलते हैं। तो बोलते हैं जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, न तपस्वी है, एकादशी आदि व्रत करता है, न चापि शीलम, न शील अच्छा स्वभाव भी नहीं है, न गुण, जो उसके उत्तम गुण होते हैं एक साधारण मनुष्य के और जो भगवान के भक्तों के, वो गुण भी नहीं है उसमें, न चापि शीलम, न गुणो, न धर्म। और धर्म, धर्म सबसे महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि भगवान राम भी, आप लोगों को पता है भगवान राम के जीवन में, देखिए जब भगवान तो भगवान है लेकिन जब मनुष्य के रूप में लीला करने के लिए आते हैं तो एक एक प्राकृत मनुष्य के समान ऐसा दिखाई पड़ते हैं कि लगता है, फिर भी वो हम लोगों को उस लीला के माध्यम से हमारे स्तर पर आकर के हम लोगों को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो भगवान राम के जीवन में भी कभी असफलता नहीं हुई है, संपूर्ण जीवन प्रारंभ से लेकर के जब तक अपने धाम गमन नहीं किए तब तक भगवान राम को सफलता मिलती ही गई, थोड़ा समय लगता गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान श्री राम ने कभी भी धर्म का परित्याग नहीं किया। हम लोग हर क्षण में धर्म का परित्याग करने के लिए व्याकुल तत्पर रहते हैं, परंतु भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कभी भी, धर्म कई प्रकार के हैं परंतु जो पर धर्म है वो तो भगवत भक्ति है, साधारण एक जो विद्यार्थी है उसके लिए अलग धर्म है, स्त्री है उसके लिए अलग धर्म है, पति का अलग धर्म है, पुत्र का अलग धर्म है, वृद्ध के लिए अलग धर्म है, राज धर्म है राजा के लिए अलग है, गुरु का अलग धर्म है, शिष्य का अलग धर्म है, ऐसे बहुत सारे भौतिक धर्म बतलाए गए हैं। तो उन धर्मों को भी जो त्याग कर देता है, भगवान राम ने ऐसे कभी नहीं किया। हाँ, उनको आवश्यकता नहीं है हम लोगों के धर्मों का पालन करने की, हमारे धर्म हमारे लिए हैं, परंतु भगवान हमको शिक्षा देने के लिए हमारे स्तर पर आकर के हमारे जो धर्म है उनका भी अनुपालन करके शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धर्म का त्याग कर देता है, तपस्या का, गुणों का, शील स्वभाव का, न गुणो न धर्म, ते मर्त लोके भूवि भार भूता। वो लोग क्या है, इस संसार में भूवि यानी पृथ्वी पर भार भूता, भार बने हुए हैं, और एक मृग मनुष्य रूपेण दो पैर दो हाथ वाला सुंदर सा गोल मटोला मुंह होकर के एक पशु ही विचरण करता है ऐसा लगता है। इसीलिए जंतु वही कहलाएगा, इसलिए बोलते हैं जंतु, जिनके पास गुणशील धर्म स्वभाव, धर्म तपस्या आदि जो गुण नहीं है जिसके पास भी, वही इस श्लोक में जंतु कहलाने के योग्य हैं। जंतु साधारण जीव है परंतु मनुष्य में एक जंतु में अंतर यही है कि उसके पास धर्म नहीं होगा, गुण नहीं होगा, शील नहीं होगा, अच्छा स्वभाव नहीं होगा। इसीलिए अभी इस जंतु की दशाओं का हम लोग वर्णन करेंगे क्रमशः। तो जंतु क्या करता है, एतस्मिन भवे, भवे एतस्मिन, एतस्मिन भवे मतलब इस संसार में, याम योनिम अनुव्रजेत, याम याम माने जिस जिस योनि को अनुव्रजन करता है, माने जिस जिस योनि में जाता है, कहीं पर भी हो, मनुष्य है, सुकर बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा, कुछ भी बनेगा, उसको ही अपना मानने लगता है। दूसरी योनि की बात छोड़ दीजिए, अपने ही शरीर में मनुष्य जब बालक रहता है तब क्या सोचता है, मैं बालक हूं, उसमें अटैच हो जाता है, और बालक के जो उपयुक्त खिलौने हैं और भी जो वस्तुएं हैं, भोजन है जो भी है, चॉकलेट टॉफी बिस्किट जितना भी अच्छा लगता है उस बच्चे को, वो बच्चे के शरीर में जब हम लोग रहते हैं छोटा बालक के रूप में, उस समय भी अटैच हो जाते हैं अपने उस बालकपन। हमको उस समय जब छोटे रहते हैं हमको गाड़ी चलाने की कोई शौक नहीं होता है, बहुत अच्छे अच्छे चीजों का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, छोटा बच्चा किसी स्त्री में आकृष्ट नहीं होता है, किसी चीज में आकृष्ट नहीं होता है, किस में होता है, वो अपने उपयुक्त जो उसके आयु के अनुसार जो वस्तुएं हैं, खेल कूद के जो सामग्री है, खेलना कूदना, इसी में लगा रहता है। इसका मतलब हम लोग इसी योनि में, मनुष्य की योनि में भी जिस अवस्था में रहते हैं उसी में मोहित हो जाते हैं, दूसरे योनि में जाएंगे वहां मोहित होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, है ना। हम लोग अभी देखो, मैं भी अभी युवक हो गया, अभी मैं इस योनि, इस समय में मुझे छोटे छोटे खिलौनों से खेलने में कोई रुचि नहीं है, अभी मुझे बड़े बड़े खिलौने चाहिए, दूसरी दूसरी चीजें चाहिए जो इस शरीर के उपयुक्त हैं। तो मैं अभी इस शरीर में अटैच हो चुका हूं, कुछ समय के पश्चात जब और उम्र बढ़ेगी पत्नी पुत्र आदियों में व्यक्ति अटैच हो जाता है। पत्नी आएगी उसमें भी पत्नी और फिर उसके बाद बच्चा आएगा उसमें अटैच हो जाएगा, फिर खुद बच्चा था उसको भूलता जा रहा है। उसके बाद जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति फिर बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं उसमें अटैच हो जाता है। तो इसके लिए यहां पर भगवान कपिल अपनी मां को अवगत करा देना चाहते हैं कि ये जीव का नित्य स्वभाव है, जिस जिस जगह पर जाता है वहीं पर अटैच हो जाता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ हो जो भगवत धाम से आए हो अभी अभी, लेकिन अधिकांश व्यक्ति इस संसार के 99.9 जीवा जितने भी हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई सा भोग नहीं है, ऐसा कोई सा भी योनि नहीं है जहां ना गए हों। कई बार हम लोग मनुष्य का देह भी कई बार प्राप्त कर चुके हैं, पशु की योनियों को भी कई बार प्राप्त कर चुके हैं, वृक्ष भी बन चुके हैं, स्त्री पुरुष का भोग भी हो चुका है, अन्न आदि भी कई प्रकार के बदल बदल करके खा चुके हैं। ऐसा कोई भी योनि कोई भी संसार में स्थान, हम लोग अमेरिका में भी जा चुके हैं, जो अमेरिका जाने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं तो विदेशों में घूमने के, वहां भी जन्म हो चुका है, वहां पर भी कीट पतंगे मनुष्य आदि की योनियां भी मिल चुकी हैं कई बार, क्योंकि जीव क्या है अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से घूम रहा है यहां पर। इसलिए संसार में कोई भी ऐसा स्थान कोई भी भोग नहीं है जो हम लोग ना भोगे हों। परंतु अभी प्रश्न उठता है फिर जीव जब भोग लिया तो तृप्त क्यों नहीं हुआ, उसको तृप्त हो जाना चाहिए। तो यहां पर समस्या यह है कि प्रभुपाद ने यहां पर माया शब्द का प्रयोग किया है तात्पर्य में, ये जो माया है ये बीच में आकर क्या करती है भुलवा देती है। लेकिन वस्तुतः माया किसी घर में रहने वाली कोई देवी जैसा दिखाई पड़ने वाली नहीं है। माया का मतलब है जो नहीं है, मां मतलब जो नहीं, या मतलब जो जो नहीं है वो माया है। माया का दूसरा अर्थ होता है संस्कृत में मांग धातु है, उससे मियते जगत अनयायिति माया, जिससे पूरा जगत व्याप्त है, माने जो पूरे जगत में व्याप्त है अंदर बाहर सब जगह केवल माया के ही तो गुण है। पूरे शरीर पूरी वस्तुएं त्रिगुणात्मक है कि नहीं, हर वस्तुओं में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, इसलिए दूसरा अर्थ होता है माया का नियते जगत अनयायिति माया, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, ऐसे कोई वस्तु नहीं संसार की जो माया से व्याप्त ना हो, माया वहां पर ना हो, मतलब त्रिगुण अव्यक्त रूप में। इसीलिए तो जो माया है क्या करती है भुलवा देती है, वस्तुतः माया नहीं भुलवाती है। जब व्यक्ति प्रकाश से जब दूरी की तरफ जाता अंधकार की ओर, तो व्यक्ति को जितनी अधिक दूरी बनती जाएगी वस्तुएं उसके सामने आती हुई भी एक बार देख चुका वो उनको फिर अंधेरे में देख नहीं पाता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में कहते हैं कि भयम द्वितीया विनिवेशता स्याद ईसाद अपेतस्य विपर्यो स्मृति। ये विपरीत स्मृति क्यों हो जाती है जीव की, क्योंकि माया के कारण से व्यक्ति यहां वहां भ्रमण करता है, जिस योनि में जाता अपने आप को मैं भगवान का अंश हूं इसको भूल करके क्या करता है, मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब मानने लगता है। और वो दूरी होकर के कोई भी व्यक्ति हो प्रकाश के से यदि अंधकार की तरफ जाएगा तो प्रकाश उससे वो दूर होता जाएगा और उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, अपना स्वरूप भी भूल जाएगा और दूसरे का भी भूलता जाएगा, दूसरे को भी नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए जिस जिस योनि में सूकर की हो, प्रभुपाद के लेक्चर्स में जितने भी लेक्चर्स हैं प्रभुपाद सूकर को ज्यादा बोलते हैं, सूकर योनि, क्योंकि सबसे निकृष्ट है, जो मनुष्य त्यागता है सूकर उसको ही अमृततुल्य समझ करके भक्षण करता है। यहां पर भी एक बार प्रभुपाद ने यूज किया सूकर। तो जिस योनि में भी हम लोग यदि मनुष्य की योनि में रहने के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा अन्न खाते हैं, दाल चावल है ना, मिठाई तरह तरह की, लेकिन वस्तुतः यदि आत्यंतिक रूप से परमार्थिक रूप से यदि देखेंगे इस पर विचार करेंगे तो जो आपका स्टूल है वो भी पृथ्वी का अंश है और जो ये अन्न आदि है वो भी पृथ्वी के ही विकार हैं। हम लोग चावल आदि खा करके बड़ा उसमें अभिमान करते हैं, लेकिन सूकर को चावल दीजिए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको हमारा मल ही बहुत सुंदर अमृत तुल्य लगता है। आप उसको मल से हटाइए, हट यहां से मल मत खा, तुम्हारे लिए हम बासमती का चावल और बढ़िया हलवा बना करके ला रहे हैं, कभी नहीं खाएगा, उसको वही अच्छा लगता है क्योंकि उसके जीवा के अनुकूल उसके संस्कार में उसके पड़ चुका है वो। इसीलिए परंतु यह उसकी अज्ञानता है कि वो सूकर, इंद्र को भी एक बार जब इंद्र सूकर बन गया था सापवश। तो उसने उसके तो 10-12 बच्चे हो गए। तो ब्रह्मा जी बहुत समय हो गया, अब इंद्र अपने सुकर योनि को छोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी छोड़ नहीं रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बुलाने के लिए आए, बोले चलो तुम अपने स्थान पर चलो, अपनी गद्दी को वापस ले लो। लेकिन इंद्र क्या बोलते हैं, इंद्र देखो यहाँ पर हम लोगों के सबके देवता हैं, पूरे सूर्य के देवता हैं, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, वही हैं सबसे बड़े देवताओं के राजा। वो भी जब सुकर योनि में गए तो क्या हो गया, उनको भी मति भ्रष्ट हो गई उनकी, और उन्होंने सुकर के उपयुक्त जो मल है खाना पसंद किया। और उनके जब 10-12 बच्चे हो गए, सुगर के कम से कम 12 बच्चे होते हैं एक बार में, तो 10-12 बच्चे जब हो गए तो बोलते हैं अरे हमारे बच्चे पुत्रों कौन पालेगा यदि मैं आपके साथ स्वर्ग में चला जाऊंगा तो, है ना। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है, जो साधुओं का संग करता है, वो तात्विक दृष्टि से विचार करता है। यदि वो तात्विक दृष्टि मतलब जो अल्टीमेट जो भगवत धाम में पहुंचाने वाली शुद्ध बुद्धि उत्तम मति, जब उससे विचार करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी हम लोग दूसरे योनि की बात छोड़ दीजिए, इसी योनि में कोई भी व्यक्ति अपनी माँ से, पुत्र से, पत्नी से, बच्चों से, दादा दादी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, जितने रिलेशन है सबसे अटैच्ड हो जाता है। यदि अच्छी गहराई से देखेंगे, जैसे एक गिलास है, गिलास का ढक्कन है, हम इसका नाम दे दिए ढक्कन, है ना, संस्कृत में सरावह बोलते हैं। तो ये ढक्कन को, वस्तुतः ये ढक्कन हम लोगों ने नाम दिया, इंग्लिश में कवर बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलेंगे। परंतु यदि बुद्धिमान व्यक्ति इसको अच्छे से देखेगा तो ये क्या है, स्टील है। इसके अंदर कहीं पर ढक्कन नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें स्टील के अतिरिक्त कुछ है नहीं। स्वरूप के कारण से इसको ढक्कन बोलते हैं और इसको ग्लास बोलते हैं, और इसको देखिए ये लोहे का माइक है ना। किसके लिए, स्वरूप परिवर्तन वस्तु। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या देखता है, तो स्टील मात्र है, आकार को नहीं देखता, वो वस्तु को देखता है क्या है। ऐसे ही जो अत्यधिक रिलाइज्ड पर्सन है, साक्षात्कारी व्यक्ति, जो साधु संग करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, श्रवण करता है, वो योनियों में भी, मनुष्य में भी, अपने समाज के अंदर क्या देखता है, जो उसकी माँ है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्र आदि है, वो क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही तो संगात है। यदि आप गौर से किसी स्त्री को देखेंगे जो हमारी माँ है, उसमें भी देखेंगे तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें कहीं छपा है क्या कि ये माँ है। वही स्त्री कभी पत्नी बन जाती है किसी क्षण, किसी क्षण किसी की बुआ बनती है, किसी क्षण मौसी, क्या क्या नहीं बनता है। उसमें कोई ऐसा छाप लगा है किसी स्त्री में या किसी पुरुष में भी ऐसा लगा है, नहीं लगा है। लेकिन हम लोगों की दृष्टि क्या है, आकार प्रकार देखने की, जो तात्व। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी वहां से निकल रहे थे तो स्त्रियों ने वस्त्र नहीं आच्छादित किए अपने शरीर पर, क्यों, क्योंकि उनको लगा कि सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि एक समान है, वो मैटर देखते हैं कि सब में तो मैटर एक समान है, वो भेद नहीं है स्त्री पुरुष का, लिंग भेद नहीं है। जब वेद व्यास जी आए तो उनके अंदर भेद है, स्त्री है, पुरुष है, ये है, तो उन्होंने उस समय कपड़े आच्छादित कर लिए। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए आपको बहुत शास्त्रों का अध्ययन, अच्छे जो साक्षात्कार व्यक्ति है उससे श्रवण करेंगे तब होगा। प्रतिदिन भागवतम सुनते हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन उतना ही अटैचमेंट रहता है जितना पहले था, है ना। आज भी भगवान के पास जाते हैं तो वही मांगते हैं जो नरक के जीवों के पास भी है। नरक में भी जाएंगे, नरक के जो जीव उनके पास भी आनिद्रा भय मैथुन है। नरकाणाम अपि संति देही नाम, नरक प्रभु महाराज बोलते हैं कि नरक में जो रहने वाले जीव हैं उनके पास भी सारे उपभोग हैं, मनुष्यों के पास है, देवताओं के पास भी है, और नरक में रहने वाले उनके पास भी है। हम लोग यदि उनकी भी उनकी कामना करते हैं वो भी बेकार है, तुच्छ है, क्योंकि वो हर जगह है। इसीलिए जीव स्वभाव क्या होता है, जैसे लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है, अभी हम लोगों को थोड़ा सा ये लाइट प्रकाशित सफेद सी दिखती है, भूरे रंग की सी दिखाई पड़ रही है, लगता है। यदि इसमें लाल रंग की जाली पड़ जाएगी, लाल रंग का कवर लगा देंगे प्लास्टिक का, तो ये लाल सा लाइट दिखाई पड़ने लगेगी, है ना। नीला लगाएंगे तो नीला दिखाई पड़ने लगेगा। वस्तुतः वो एक ही होता है। योनि में जाने से क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन अलग प्रकार से होने लगता है। सूकर में गया, उसके सोच विचार जीने का, केवल मनुष्य से छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं आहार निद्रा भय मैथुन से अधिक नहीं विचार कर पाती हैं, कोई भी नहीं कर पाता है। मनुष्य के पास थोड़ी सी बुद्धि है जो विचार कर सकता है। इसीलिए जीव जब दूसरे योनियों में जाता है तो इन सब चीजों पर विचार करने लगता है। सूकर बना, विष्ठा में आनंद। बिल्ली बना, दूध चोरी करके पीने में आनंद बना। कुत्ता बना, मांस खाने में, जगह जगह जहां भी खाना देखा वहीं मुंह लगा दिया। अब आजकल क्या हो रहा है, मनुष्य क्या है, पशुओं को, पशुओं की जो कहते, पशुओं का जो स्वभाव है उसको अपने अंदर लेकर के आ रहा है। कोई भी शास्त्र ढंग से श्रवण नहीं करता है ना उसका आचरण करने के लिए प्रयास करता है। पशुओं के जितने लक्षण है मनुष्यों में अब धीरे धीरे प्रकट होने लगे हैं, है ना। शौच क्रिया तो लगभग नष्ट हो गई है, पशु लेटरिन आदि शौच करके स्नान नहीं करता है। अभी अंग्रेजी सभ्यता में हम लोग जी रहे हैं, अभी कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं कि जहां पर मल त्यागने के बाद सोचने की आवश्यकता नहीं, उठकर चल दीजिए, ऐसा बनाया जा रहा है। मतलब मनुष्य को इतना डिग्रेडेड कर दे रहे हैं साइंस और हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, मनुष्य के पशुता तक ला करके ही छोड़ेंगे। इसीलिए आपको, हमको सबको विचार करना चाहिए कि हमको इसी जन्म में भगवत धाम कैसे जाएंगे। सीरियस होकर के जब विचार करेंगे तभी जाने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो बस इसके बाद दूसरी योनियों में जैसा ऊपर से घिरा हुआ बर्तन छन छन करते हुए नीचे तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का जो देह प्राप्त हुआ है सारी योनियों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। इसमें से गिरने के बाद सीधे 2.25 करोड़ वर्ष लगेंगे पुनः इसमें आने के लिए। मनुष्य की योनि को प्राप्त करने के लिए 2.25 करोड़ वर्ष लगते हैं, फिर से आपको घूम घूम करके इसमें आने के लिए इतना समय लग जाएगा। अब पता चले आप उसी उसी में बार बार घूमते रहें। इसीलिए जंतु इस संसार में जहां जहां जाता है उसी को अपना मानने लगता है। तस्याम तस्याम सलभते निर्वृतिम, क्या कारण है, क्योंकि वहां जाने के बाद सुख का अनुभव करता है। निर्वृति अनिवृत्ति में अंतर है, निर्वृत्ति मतलब सुख, अनिवृत्ति मतलब उससे अलगाव। तो निर्वृत्ति का अनुभव करता है जीव, सुख का अनुभव। वस्तुतः इस संसार में कोई सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, एक उदाहरण दिए हैं कि जैसे रेत में गरम गरम रेत हो उसमें एक जल की एक बूंद डाल दी जाए तो कैसा होगा, जल का पता चलेगा नहीं पता चलेगा। तो संसार में इतने सारे दुख हैं, कई प्रकार के दुख हैं, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के दुख हैं। जन्म का अलग दुख है, मरण का अलग दुख है, जरा का अलग दुख है, व्याधि का अलग दुख है। कोई भी व्यक्ति जन्म किस समय में, जब मां के गर्भ में रहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी योनि में, वहां क्या बड़े आनंद से रहता है, संकुचित होकर के मल मूत्र का जो स्थान है वहां पर कीट, जो छोटे छोटे कीड़े मल मूत्र से भरे हुए स्थान में जीव रहता है ना, वहां पर इतनी गंदी जगह पर रहता है। और उसके बाद जब बाहर आता है तो भी पूरे शरीर से उसके 9 द्वार खुले हुए आते हैं, सब जगह से गंदगी छोड़ता रहता है। उसके बाद भी उसको बहुत अच्छा लगता है वो शरीर छोटा बालक का, किसी भी योनि में जाता है, सब प्रक्रियाएं होती हैं। धीरे धीरे जब बालक रहता है उस समय खेल कूद में मस्त रहता है, घूम घूम करके समय व्यतीत करता है। लेकिन जब थोड़ा सा पढ़ने नहीं जाना चाहता है, जबरदस्ती उसको पढ़ाया जाता है, हमारे गुरुकुल में भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती टीचर पढ़ाते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों, वो पढ़ना भी एक प्रकार का दुख है, ऐसा नहीं है कि सुख है उसमें पढ़ने में, वो दुख है, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिर उसको पढ़कर उसका उद्देश्य क्या है पता है, आप सभी के बच्चे हैं, सब कुछ है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। हम सब क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे को हम गधे जैसा परिश्रम करके स्कूल में भेजते हैं, पैसा खर्च करते हैं, किस लिए, किसी के हाथ कुछ पैसे में बेचने के लिए, लिया दिया वो एक ही होगा, घुमा करके वही काम कर दिए। आपने पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद पैसा बच्चे की पढ़ाई में लगाया, उसको IIT में भेजा, इंजीनियर बनाकर गोल्ड मेडल दिला दिया, लाखों रुपए खर्च किया, लाखों रुपए खर्च करने के बाद क्या हुआ, वो फिर किसी को 10-20-30 लाख रुपए में बेच देंगे किसी कंपनी में, जा उस कंपनी का अधीन हो जाए, गुलाम हो जाएगा। तो सोचिए, हम लोग भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं किस लिए, किसी का गुलाम बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा देते हैं किस लिए, किसी के अधीन करने के लिए। ये बुद्धिमत्ता नहीं है मनुष्य की। बच्चा एक तो पैदा किया, उसको यदि ले भी आया धोखे से, एक तो बच्चा जान करके तो कोई आजकल पैदा करते नहीं है, पहले ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होता था, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही होता था, क्यों, क्योंकि गर्भाधान आदि संस्कार होते थे तो सिस्टमेटिक तरीके से होता था। अभी तो धोखे से बच्चे पैदा हो जाते थे अपनी इंद्रिय सुख के कारण, इसलिए बच्चा भी उसी प्रकार से निकल जाता है। और हम लोग उसको पढ़ा लिखा कर खूब परिश्रम करके उसको डिग्रियां दिला करके डिग्री किसी के हाथ बेच देते हैं। सोचिए, किस लिए डिग्री दिलाते हैं, दूसरे के हाथ बेचने के लिए। बच्चा यदि पैदा किया तो कम से कम उसको ऐसा सिद्ध करिए, उसको ऐसा तैयार करिए कि वो किसी संसार में, इतने सारे भटक रहे लोग हैं, ये संसार एक ड्रामा के जैसे चल रहा है कि नहीं। संसार मूवी, एक हम लोग मूवी देखने के लिए भागते हैं, ये संसार ही एक मूवी के जैसे है। हर आदमी दौड़ रहा है, पागल पता नहीं क्यों दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। सूर्य चंद्रमा इंद्र सब दौड़ रहे हैं। यहाँ ऑटो वाला, रिक्शे वाला, भिखारी हो चाहे पैसे वाला हो, धनी हो, रोगी हो, अमीर हो, सब दौड़ रहे हैं। किस लिए? वही सुख के लिए। वो पिछले वाली योनि में नहीं मिला था, इसलिए इस योनि में आया, तो फिर से सुख चाहता है और ढूंढ रहा है, लेकिन उसको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि यहां पर है नहीं। नारद जी बोलते हैं कि राय कलत्रम पशवो सुतादयो ग्रहा मही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामा क्षणभंग आयुषः कुर्वन्ति कियत मर्त्यस्य प्रियं चलाः। जो वस्तु निरंतर, जिसकी आयु क्षीण हो रही है, हर क्षण बदलने वाली चीज है, उससे कोई व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकता है? नहीं। नारद जी बोलते हैं सातवें स्कंद के सातवें अध्याय में, बोलते हैं कि पशु, स्त्री, सुतादि, मही माने पृथ्वी जो भी है, कुंजर हाथी, और भी जितना आपने एकत्रित किया अपने परिजनों को, इन किसके लिए? इनसे आनंद मिलेगा। परंतु क्षण भंगुर आयुषः सर्वे अर्थ कामाः, संसार में जितने अर्थ और काम हैं, सब कैसे हैं? क्षण क्षण में भंग होने वाले हैं। और जो वस्तु हर क्षण भंग होती है, उसमें कोई व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता है। हम लोग शरीर को कितना सजाने के लिए प्रयास करते हैं ना, लेकिन बूढ़ा हो ही जाता है, चमड़ी शिथिल हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंख में दिखना कम हो जाता है, कान में सुनाई कम पड़ने लगता है ना। स्त्रियां भी बहुत सजने के लिए प्रयास करती हैं, काजल, टिपकी, बिंदी सब लगाती हैं, लेकिन लगाने के बाद उसको भय बना रहता है। अभी थोड़ी जाते जाते, घर से निकलते निकलते दो चार बार आईने में देखकर जरूर जाएंगे, लेकिन फिर रास्ते में आ जाता है, फिर से बिगड़ने का डर है, उनको पता है कि बिगड़ रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर पॉकेट में भी, अपने बैग में, पर्स में लिपस्टिक डालकर आईना रास्ते भर बनाते हुए जाएंगे। क्यों? उनको पता है, उनको मालूम है कि शरीर बार बार बिगड़ रहा है, फिर भी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आदमी जान करके अपने आप को गर्त में ढकेलते रहता है ना, हर आदमी कोई भी हो। इसीलिए जो क्षण भंगुर आयुषः, जिसकी आयु क्षण क्षण की है, हमारी कितनी आयु है? हर क्षण नष्ट हो रही है, फिर भी हम लोग इसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो बोलते हैं नारद जी, कुर्वन्ति कियत प्रियम, कितना प्रिय कर सकता है व्यक्ति? जो स्वयं स्थायी नहीं है, वो दूसरे को कैसे सुखी बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसके लिए, और वो गोकर्ण ने भी अपने पिता को इसमें, जैसे इन्होंने अपनी मां को वैराग्य दिलाने के लिए सारी बात बोली है कि मनुष्य कभी भी किसी भी योनि में जाए, सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि सुख नहीं है यहां पर। यदि सुख है तो गर्म रेत में जैसे एक बूंद जल की रहती है, बस उतना है। अब सोचिए कितना है। उसके बाद यहां पर सुख भी कैसा है? जहर के साथ, जैसे थोड़ा सा मीठे में जहर मिला दिया जाए, कैसा रहेगा? मीठा खाते समय क्या होगा? मीठा तो लगेगा, परंतु मर जाएगा आदमी कुछ समय के बाद। तो इतने सुख भोगने के लिए भागते हैं, लेकिन सुख है नहीं। सुख होता तो आपको हर समय भी किसी वस्तु में सुख होता तो मरने के बाद भी सुखी करता व्यक्ति, लेकिन कोई सुखी नहीं करता है किसी को, है ना। हम लोग मिठाई भी खाते हैं, यदि मिठाई में भी सुख का मीठापन यदि हमेशा होता, आनंद देने की प्रवृत्ति यदि मिठाई में होती, तो हम जब एक दो तीन चार पांचवें तक जाकर के ये नहीं कहते कि बस अलम करो, अब देने से अब मत दो, बहुत मीठा हो गया, उल्टी आने वाली है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तु में सुख नहीं है। यदि वस्तु में सुख होता तो तीनों काल में सुखी करती, लेकिन वस्तु में नहीं है, वो एक भ्रम मात्र होता है। इसीलिए गोकर्ण ने जिस प्रकार यहां पर कपिल देव अपनी मां को उपदेश किया जीव के बारे में, जीव कैसा क्षण भग्न है, हर क्षण क्षण उसका शरीर नष्ट हो रहा है, हम लोग उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो बोलते हैं कि देहे अस्थि मांस रुद्रे अभिमतिन त्यजत्वम जाया सुतादिशु ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। क्यों? क्योंकि यह जगत कैसा? वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये प्रकृति को अपनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपने पुत्र को उपदेश करते हैं, तो जब हम अपने पुत्र को उपदेश नहीं करते हैं तो पुत्र भी हमको फिर उपदेश नहीं करता है। परंपरा नष्ट हो गई है वैदिक परंपरा में। आप शास्त्रों में कहीं भी देखेंगे तो कोई पुत्र ही अपनी मां को उपदेश करता मिलेगा, कोई पिता को, कभी 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 पति अपने पत्नियों को उपदेश करता मिलता है, सब अपने घर वालों को उद्धार करना चाहते हैं। यहां गोकर्ण अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं कि देहे अस्थि मांस रुधिरे, इस शरीर देह में क्या है, मांस। इस शरीर में 72,000 नाड़ियों से भरा हुआ है शरीर, ऐसा जाला के जैसे है, चमड़ी निकाल देंगे मांस हट जाएगा तो दिखाई पड़ेगा पूरा कैसा कैसा है, इतना गंदा शरीर है, इसमें नस ही नस है सब जगह, ये मांस को पकड़े हुए हैं नसे, है ना, कि बाहर ना जाने पाए। ये तो चमड़ी लगी है, चमड़ी को निकाल देंगे तो डेली क्षण क्षण में गिरता फेरेगा, किसी काम का नहीं है। तो बोलते हैं देह अस्थि हड्डियों से बने ढांचा है, ये हड्डियों से टिका हुआ, इसकी दीवार है हड्डियां। देह अस्थि मांस रुधिरे, खून लगा हुआ है तारों तरफ बहता रहता है, तभी इसमें सॉफ्टपन है, मुलायम रहता है, बना रहता है, क्रियाएं चलती रहती हैं। बोलते हैं कि इस शरीर में जो 7 धातुओं से बना हुआ है, इसमें जो अभिमति है, अभि मतलब मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा जो भाव है मैं मेरे का, इसको बोलते हैं अभिमति। बोलते हैं त्यजत्वम, तुम इसको त्याग दो इस भाव को, क्यों, क्योंकि तुम्हारा नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कभी रहेगा भी नहीं, ये हर समय बदल रहा है ना। हम लोग अपनी पुरानी 25-30 साल पुरानी फोटो देखेंगे उठा करके तो पता चलेगा कि मैं तो ये नहीं हूं, अभी तो बदल चुका, टोटल शरीर बदल गया है ना। यदि किसी को जानकारी लेना तो अपनी फोटो देख लो, पता चल जाएगा कि शरीर कैसा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि त्यजत्वम और सबसे ममता, जाया सुतादिशु, जाया माने पत्नी, सुत याने पुत्र, जाया में, सुत में, और भी जितने संबंधी उसमें ममताम विमुंच, ममता छोड़ दो, क्योंकि सारे बॉडी जितने हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के विकार हैं, केवल देखने मात्र से लगता है हाँ एक समान है ना, कोई भी अलग अलग जगह से कभी भी बोलते हैं ना ये मेरा है मेरा है। हाथ में जैसे बालू को आप उठाइए, रेत को हाथ में, रेत को उठा लीजिए और कभी भी एक रेत दूसरे रेत की हो ही नहीं सकती है, वो छोड़िए तो अलग अलग ही रहती है। इस संसार में जितने भी शरीर है आप झूठा बोलते रहिए, ये मेरा है, मैं हूं, ऐसा है, कोई आपका नहीं है। जैसे रेत एक दूसरे से जुड़ नहीं सकती है ना, ऐसे संबंध भी नहीं जुड़ सकते हैं, झूठा है। इस संसार में रहते हुए रेत के समान है सब, एक ही जगह पर, जैसे रेत एक मुट्ठी में होकर के भी एक जगह है परंतु एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकती है, मिल नहीं सकती है, एक नहीं है। ऐसे ही संसार में रहते हुए जितने भी जीव हैं सब अलग अलग जगह से आते हैं और एक जगह आकर मिल जाते हैं, फिर टाइम होता है फिर चले जाते हैं। ये भगवान की जो अवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका शक्ति है वो करती रहती है। ये शक्ति के विषय में इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा विषय है, ये वेदांती लोग सब इस पर बहुत बोलते हैं, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका शक्ति। तो इसलिए गोकर्ण अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं कि जाया माने अपनी पत्नी पर, उसकी पत्नी तो पहले मर चुकी थी पहले ही, फिर भी दूसरी पत्नी ना कर ले कहीं, इसके लिए उपदेश कर रहे हैं। व्यक्ति की लालसा है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, उसके बाद भी जो इच्छा है नहीं जाती है, तृष्णा, हमारे अंदर की कांति चली जाएगी, कांति जो देवी है, कीर्ति जो देवी है, गति जो देवी है हमारे शरीर की, वो चली जाएंगी छोड़ करके, सब चली जाएंगे, लेकिन तृष्णा रूपी जो देवी है हमारे शरीर में रहती है, वो छोड़ती नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं लेकिन वो देवी नहीं छोड़ती, तृष्णा हमको हमेशा बनी रहती है। बुढ़ापे हो जाएंगे लेकिन फिर भी स्त्री प्राप्त करने की, भोगों को प्राप्त करने की कामना रहती है, अब नहीं कर पा रहे हैं वो अलग की बात है ना। इसीलिए ममताम भी मुंचा, जितने भी लोग हैं रखिए ममता जितनी आवश्यक है, क्योंकि नहीं है आपका है नहीं, कुछ समय बाद बदलने वाला है, कुछ और संबंध हो जाएगा, यहीं पर दूसरे योनि में क्या, कभी वही स्त्री हमारी पुत्री कहलाती है, किसी की मौसी बुआ पत्नी हो चुकी है, संबंध बदल गया कि नहीं, आपके साथ भले लेकिन उसके और भी संबंध हो गए, तो यहीं पर जब बदल जा रहा है तो दूसरी योनि में तो अपने आप बदलता ही है। इसीलिए ममताम विमुंच बोलते हैं क्यों ऐसा करना है, पश्य अनिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, इस जगत को देखो, अनिशम देखो, अनिशम माने निरंतर देखो, क्यों कैसा देखना है, क्षण भंग निष्ठम, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, हर वस्तु में विकृति आ रही है, इसलिए ऐसा जब विचार करने लगोगे तब जाकर के आत्म साक्षात्कार होगा। और करना क्या है, केवल ऐसा सूखा वैराग्य नहीं लाना है। बोलते हैं वैराग्य राग रसिका भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य लाओ, राग उत्पन्न करो, भगवान के प्रति भक्ति में निष्ठा प्राप्त करो। जब भक्ति में निष्ठा प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे गुण आएंगे। पहले भक्ति प्रारंभ करिए, इनको छोड़ने के लिए ज्यादा प्रयास मत करिए, अपने से पहले भगवान को जोड़िए। जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है, यानी कि अंधकार को पहले भगाने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर सूर्य आते हैं तब लाइट करता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। जिस क्षण प्रकाश आता है उसी क्षण, कोई अंतर नहीं, उसी क्षण अंधकार नष्ट होता है। ऐसे ही जिस क्षण आप भगवान की भक्ति में संलग्न होंगे हम सब, उसी क्षण वो ज्ञान उत्पन्न होगा और वैराग्य की भावनाएं भी पैदा होंगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च दहेतुकम्। वो ज्ञान और वैराग्य पैदा होने लगता है ना। चुंबक को कभी भी लोहे से स्पर्श कराने से अपने आप उसमें चुंबकत्व आता है, यानी कि पहले लोहाकत्व, लोहा के गुण हटाने पड़ते हैं, फिर चुंबक का गुण उसमें लाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। चुंबक से संपर्क हुआ ही लोहे का, उसमें चुंबक के गुण आने लगते हैं अपने आप। इसीलिए जब भगवान के साथ अपने आप को जोड़ देंगे तो सारे गुण आने लगेंगे, अपने आप भगवत गुण आएंगे और भगवान की तरफ मति होगी, संसार से वैराग्य पैदा होगा। और इसके लिए थोड़ा प्रयास कर भी सकते हैं। इसीलिए जिस जिस योनि में भी जाए, अभी तो इसमें अभी इतना सारा, इतनी गंभीर वार्ता है इसके अंदर, मनुष्य का जन्म जिस योनि में भी जाता किस प्रकार से, फिर उसके बाद उसमें रोग, नाना प्रकार के दुखदाई रोग पैदा होते हैं मनुष्य के शरीर में। ऐसा नहीं कि केवल योनि में चला गया बस हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें रोग भी पैदा होते हैं, शरीर नष्ट होता रहता है, फोड़ा फुंसी, टीवी की, मलेरिया का, कैंसर का, कई प्रकार के, यहां तक कि पशुओं को भी रोग होते हैं, केवल मनुष्यों को नहीं होता है, पशुओं को भी होते हैं। अब मनुष्यों में तो रोग होते ही हैं, क्योंकि खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, पीने में कोई कंट्रोल नहीं है, जहां तहीं जहां कहीं भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, रात को क्या खाना, सुबह कोई विचार नहीं। पशु को जैसे विचार नहीं होता, ऐसे मनुष्य को भी विचार नहीं है, इसलिए वो बीमार पड़ता रहता है। अब बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो सबसे ज्यादा दुखदाई है, आप लोग जो बूढ़े हो रहे हो जानते हैं, हम लोग भी बूढ़े होंगे तो पता चलेगा, जब ये शरीर बूढ़ा होगा। सोच सकते हैं कि बुढ़ापा वाला जो व्यक्ति है उसमें पूरे पूरे बालक के गुण आ जाते हैं। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, उसके बाल नहीं होते, बाल हट जाते हैं, मुंह में लार हमेशा गंदगी भरी रहती है, उसके नाक कान मुंह लेटरिन से भरा रहता है गंदगी से, कभी भी लेटरिन कर देता है बालक। ऐसे बूढ़ा व्यक्ति भी कभी भी उसको टॉयलेट लगा दिया, लीवर खराब हो जाता है, कभी भी आंख से कीचड़ का लगा रहता है, जैसे बालक को पोछने वाला चाहिए मम्मी, ऐसे बूढ़े व्यक्ति में भी इसी प्रकार की दुर्दशा होती है, देखना कम हो जाता है, आंख से दिखता नहीं है, कहीं लाठी रखता है कहीं पर पड़ जाती है। और कई धुंधकारी जैसे यदि व्यक्ति मिल जाए, धुंधकारी क्या करता था, हो जो अंधे व्यक्ति यदि बोलते थे भैया जरा हमको सड़क पार करा दो, तो क्या करता था कि उनको जाकर कांटे में ढकेल देता था। हम लोग तो कांटे में जा ही रहे हैं, संसार तो कांटा रूपी है ही, वहां पर ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो और कष्ट, आंख से दिखता नहीं है, आंख अंदर घुस जाती है, भौं सफेद पड़ जाती है, सारी सुंदरता खत्म हो जाती है बुढ़ापे में, चमड़ी शिथिल होकर के झुर्रियां पड़ जाती हैं, मांस ढीला, मांस समाप्त होने लगता है, हड्डी हड्डी बचती है, हर बूढ़े की अवस्था ये होती है। किसी भी योनि में जाएंगे चार चीजों से नहीं बच सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। तो जो जरा है ये बहुत डेंजर, इसका तो कम से कम इतना निरूपण है बुढ़ापे का कि व्यक्ति को वैराग्य कैसे पैदा होगा, बुढ़ापा किस प्रकार से है। फिर भी व्यक्ति तृष्णा नहीं छोड़ता है, शरीर शिथिल हो जाएगा, सब शिथिल हो जाएगा, हाथ पैर जवाब नहीं देंगे, कुछ भी जवाब, कोई इज्जत नहीं करता है बूढ़े व्यक्ति की, कोई करता है, कोई भी नहीं करता है, बहुत कम जो समझदार भक्त लोग हैं वही करते हैं, बाकी बूढ़े व्यक्ति है बाबा जी आप जरा बैठे रहिए किनारे, ज्यादा मत बोलिए, अब आप तो कुछ करेंगे धरेंगे है नहीं, करना हमको है, आप मौन बैठिए, है ना, ऐसा लोग व्यवहार करते हैं बूढ़ों के साथ में। तो जरा सोचिए कि बुढ़ापा दोबारा ना प्राप्त हो इसके लिए क्या करना चाहिए। प्राप्त तो होगा, सबको होगा, लेकिन अगले समय में दोबारा ना प्राप्त हो इसके लिए विचार करना चाहिए। इतना बच्चे के जैसा बना देता बुढ़ापा, है ना, हर बूढ़ा आदमी बच्चे के जैसा एक्शन करने लगता है, तोतली बाणी बोलता है, क्यों, दांत वांत झड़ जाते हैं, जैसे बच्चा होता है उसके दांत रहते नहीं है छोटे से, तो भी तोतलाता रहता है, जब दांत आते हैं अभ्यास करता है, बूढ़े व्यक्ति के अब दांत दोबारा आने नहीं है, नकली लगा ले कुछ भी करे, मुंह घुस जाता है अंदर, दांत के अंदर गंदगी तो भरी ही रहती है। चलने में जैसे बालक लड़खड़ा करके चलता है, ठेक ठेक करके पकड़ पकड़ चलता है, ऐसे डंडे पकड़ कर दीवार पकड़ कैसे तैसे लेटरिंग तक पहुंचता है, क्योंकि उसका डेरा लेटरिंग में डाला रहता है बूढ़े आदमी का। अधिकतर दिन में 5-7 बार से ज्यादा बार लगती है, फिर भी लोभ नहीं त्यागता है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, बच्चा भी छोटा है, आजकल के बच्चे ही बहुत चालाक हो रहे हैं, उनमें छोटी अवस्था से ही लोभ पैदा हो जा रहा है। पहले तो जानते नहीं थे, खेलते कूदते रहते थे, अब तो इतना पैसा कमाने का लोभ सब में व्याप्त हो गया है, किसी न किसी प्रकार से वो पैसा आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उसको भी भाव आ गया, मैं पैसा कमाऊंगा, बुद्धि दौड़ाऊंगा, कैसे भी कमाना है ना। ऐसे ऐसे लोभी बच्चे। एक बार एक राजा के यहाँ एक शर्त हो गई, जो सबसे ज्यादा 3 झूठ बोल देगा उसके साथ मैं अपनी लड़की का विवाह कर दूंगा। राजा ने ऐसा घोषणा कर दिया, जो 3 झूठ बोल सकता है मैं उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करूंगा। अभी बच्चों को देखिए कितने चालू हैं, वहां पर 1-2 बच्चे थे, बूढ़े बूढ़े भी आए, जवान भी आए, क्योंकि उसकी राजा की लड़की है, बहुत पैसा मिलेगा। अभी सारे लोभ में चले गए राजा के यहां पर, बच्चा भी चला गया। तो बच्चे को देखकर बच्चे ने बोला, मैं भी कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाह रहा हूं। तो सारे लोगों ने बोला, तुम क्या लोगे, तुम झूठ बोल भी नहीं पाओगे। बच्चे बोला, ऐसा मत समझो, छोटा बच्चे हैं लेकिन बहुत काम के हैं, अभी देखो हमारे अंदर कितना ज्ञान है। सबको चांस दिए, 2-4 लोग हार गए। बाद में बच्चे ने बोला, हमको भी तो एक चांस दीजिए। तो जब उसको एक चांस मिला कि जाओ तो बताओ तुम 3 झूठ संसार के जो सच हो ही नहीं सकते हैं, तो उसने बोला, अभी बता रहा हूं। बोलता, पहली बात तो यह है कि हमारे पिताजी ने एक बैल के ऊपर एक वृक्ष का आरोपण किया था, और वृक्ष बैल के ऊपर से उग आया, बहुत बड़ा बन गया। बहुत बड़ा बनने से क्या होता है, जब हमारे पिताजी किसान हैं तो खेती करते हैं, तो उस समय उनको बड़ी छाया मिलती है उस वृक्ष से। तो राजा सोचा, रहे बिल्कुल सही, एक झूठ तो हो गया। बोले, तो सरासर झूठ बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी बैल में कोई पेड़ उग जाए, है ना। तो उसने क्या किया, बोला, चलो तुम्हारा एक झूठ मान्य होगा, दूसरा झूठ बोलो। बोलता है कि मेरे मोहल्ले में बहुत सारे गधे हैं जिनकी बड़ी बड़ी सींग है और सींगों से लड़ते रहते हैं। तो राजा ने बोला, ये भी बिल्कुल सत्य झूठ बोल दिया, क्योंकि गधे की तो सींग होती ही नहीं है, किसी भी जन्म में हो ही नहीं सकती है ना। तो उसने बोला कि 2 झूठ तो हो गया, अब कहीं तीसरा ना बोल दे, छोटे बच्चे से मेरी लड़की की शादी करनी पड़ेगी। तो बड़ा असमंजस में पड़ गया। बच्चा बोला, नहीं मैं तीसरा ही बोल दूंगा। तो बच्चे ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोलता है, सुनिए, पिछले जन्म में आप एक भिखारी थे, राजा को बोलता है, और मैं राजा था, और आपने मेरे से 1,00,000 स्वर्ण की मुद्राएं उधार ली थी। अब यदि आप इसको झूठ मानते हैं तो 3 झूठ हो गए, अपने लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, और यदि सच मानते हैं तो 1,00,000 रुपए हमको दीजिए। समझे। तो उसने क्या किया, वो इतना चालू बच्चा था, छोटा सा था, लेकिन इतनी बुद्धि दौड़ाया कि दोनों तरफ से पैसा, लड़की का विवाह करेंगे झूठ मानेंगे तो लड़की का विवाह करेंगे, और लड़की विवाह करेंगे तो राजा तो देगा घोड़ी हाथे सब पैसा भी देगा, और यदि सच मान लिया, सच मानता है, यदि इस झूठ को झूठ नहीं मानता है तो ठीक है, फिर अपनी हमारे 1,00,000 रुपए दो। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से बच्चे भी इतना लोभ से अभिभूत होकर के ऐसी ऐसी बुद्धियों का प्रयोग करते हैं जिसमें मनुष्य का कोई लाभ नहीं है, और पैसा प्राप्त करेगा भी क्या, पैसे वो बैंक में डाल देते हैं, बैंक वाला अपना बिजनेस करता है, आप तो जो खा पी करके पचा लिए वही आपका रहता है, खाली सुनते रहते हैं कि मेरा इतना पैसा है, 2-5 लाख 10 करोड़ जितना भी डालते हैं, है ना। धन केवल आजकल श्रवण मात्र हो गया है, किसी को अच्छे से नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोगों को अलग अलग योनियों में जाने से बचने के लिए, जो मनुष्य का देह है, दुर्लभम मानुषम देह, देह मनुष्य का सबसे ज्यादा दुर्लभ है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो भक्ति के सिस्टम है, भागवत का इतने दिन से श्रवण कर रहे हैं, जो उत्तम है श्रवण कीर्तन आदि, जो भक्ति है भगवान की साक्षात भक्ति, उसका आश्रय लेकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करिए। हम लोगों की समस्या क्या है, जिस योनि में भी जाते हैं, याम जिस योनि में भी जाते हैं, क्या करते हैं, अपने प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और हमारे प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए वो दुखी दुख होता है, क्योंकि जीव कभी प्रसन्न हो नहीं सकता है ना। अकेली इस ये यदि इस अंगुली को मैं अकेला निकाल दूं ना इससे अलग, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सूख करके नष्ट हो जाएगी। ये इसके साथ है तो अपने आप सुखी है, इसमें भी बहुत कार्य हो जाते हैं। पेड़ से यदि पत्ता अलग हो जाएगा तो क्या, सूखने लगता है, जब तक पेड़ में लगा रहता है वृक्ष में तब तक वो हरा भरा रहता है, इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नैवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुख से अथा मुख श्री। भगवान को आपको प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं तो बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं। बोलते हैं कि आप हर वस्तु को भगवान पर अर्पित करिए। लेकिन कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यदि हम भगवान को अर्पित क्यों करें, उनके पास तो सब कुछ है। वस्तुतः भगवान तो निज लाभ पूर्ण है, उनके पास आपकी दी हुई वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको ही दे चुके हैं इतना सारा, फ्री में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब दिए हैं। कोई टैक्स लगाए हैं? नहीं लगाए। ये तो नेता लोग हैं, उसको ले लेकर के उसको यहां वहां ट्रांसफर करके टैक्स लगा लगा कर हम लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन भगवान कभी इतना सारा फ्री में दिए हैं, कभी भी एक भी टैक्स नहीं लगाए हैं, है ना। हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। और उनकी वस्तु प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नई बात मना प्रभु निज लाभ पूर्ण मानम जनात, उस मनुष्य से जो व्यक्ति भगवान को अर्पित करता है उससे के करुणो वृणीते, भगवान उस व्यक्ति करुणा को ग्रहण करते हैं, वस्तु को नहीं चाहिए उनको। बस देखते हैं कि इसमें कितना भाव है। बोलते हैं कि यद यद विदधीत मानम, हम लोग जो भी भगवान को मान अर्पित करते हैं, भगवान तो हम भोग अर्पित करते, भगवान उठा के लेके चल देते हैं क्या? हम ही तो खाते हैं ना, लेकिन अर्पण करते हैं तो भगवान उससे हमारा जो मान है, हमारी जो भक्ति का भाव है उसको ग्रहण करते हैं, बाकी आपको दे देते हैं। बोलते हैं यदि यदि विदधीत मानम तच्चात्मने, वो अपने लिए होता है। यथा बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है दर्पण के सामने जाए, दर्पण के समक्ष में जाकर के, मान लो हम ही लोग प्रतिदिन दर्पण के सामने जाते हैं, अपने मुख की शोभा बढ़ाने के लिए तिलक करते हैं। तिलक जब हम करते हैं तो वो जो आईने में जो हमारा शीशे में हमारा जो दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब दिखता है, जब हम अपने असली रूप में तिलक लगाते हैं तो प्रतिबिंब में अपने आप तिलक लग जाता है ना, सामने दिखाई पड़ता है कि ये प्रतिबिंब में लगाया तिलक, जो सामने मेरा प्रतिबिंब है उसमें भी तिलक लग गया। परंतु कभी आपने देखा है कि आपका प्रतिबिंब आपके दर्पण में है, आपका जो रिफ्लेक्शन उसमें आप ऐसे करके तिलक लगाइए दर्पण के ऊपर, आप जैसे हटेंगे वो तिलक कहां रह जाएगा? दर्पण में रह जाएगा, न तो आपके प्रतिबिंब में लगा ना अपने असली स्वरूप में लगा। तो बोलते हैं इसी प्रकार से जीव जब भगवान की प्रसन्नता के लिए, मीन्स बिंब, भगवान बोले बिंब रूप में है, व्यापक है, जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करेंगे तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि हम अपने प्रसन्नता के लिए, जैसे हम लोग प्रतिबिंब में तिलक लगाते हैं तो भी प्रतिबिंब में रह जाता, कहीं नहीं रहता, ना प्रतिबिंब में ही रहता है न बिंब में रहता है, तो उसी प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए शुद्ध भक्ति वही है, मैं भक्त बनूंगा, मैं भक्त बनकर के ये करूंगा वो करूंगा ऐसा बनूंगा, ये सब एक्चुअली नॉनसेंस बात है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इसके लिए प्रयास करना ही उत्तम भक्ति है। हम अपना बने भक्त बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बेकार है। भगवान कृष्णा मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, कृष्णा इज प्लीजिंग और नॉट, जब इस प्रकार का भाव आएगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, तब समझो आपकी बुद्धि में कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, कि आप हर कार्य को करने के पहले सोचते हैं कि भगवान की प्रसन्नता, कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं। तब इसीलिए हम लोगों को इतने वर्षों के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। अब इसमें भी यदि ब्रह्मा जी भी हमारे लिए दुख करते हैं, पता है भागवतम में विदुर जी भी तीसरे स्कंद में वो दुख करते हैं, बोलते हैं कि मैं इन शोचनीय व्यक्तियों पर शोक करता हूं, जो इतने सोचने योग्य हैं, माने शोक करने योग्य हैं, कि जो इतना भोग करने के बाद भी आज तक तृप्त नहीं हुए और इतने भोग को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, बार बार दुखी होते हैं, बोलते हैं मैं इन पर बहुत दुखी हूं, इनको देख देख करके मेरा दुख है, क्योंकि विदुर जी वैष्णव है। अब भगवान ब्रह्मा भी बोलते हैं कि दैवेन ते हत धियो भवता प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम लेस लवाय, बोलते हैं कि क्या व्यक्ति आपसे विमुख होकर के, आपके प्रसंग से, आपकी कथाओं से विमुख होकर के वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। काम सुख लेस लवाय, थोड़े से काम सुख के लिए वो क्या करता है, बहुत अथक परिश्रम करता है। ब्रह्मा जी हमारे सबसे बड़े चिंतक हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, वो लोग हमारे पर दुखी हैं कि देखो इनके लिए मैंने सारी व्यवस्था किया और ये हमारी व्यवस्था को त्याग कर क्या करते हैं, सारी काम क्रोध के वशीभूत होकर के, भगवान के प्रसंग से वशीभूत होकर छोड़ करके, विमुख होकर के क्या करते हैं, काम क्रोध आदि इन वस्तुओं का सेवन करते हैं। इससे क्या होगा, इनका हत दिया बोलते हैं, दैवेन हत दिया, इनकी बुद्धि दैव से ही नष्ट कर दी गई है, इसके लिए इनकी प्रवृत्ति बार 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 वहीं जा रही है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको एक काम के लिए मना करो फिर वहीं भागता है। हम लोग बच्चे के समान, अज्ञानी व्यक्ति के समान हर भोग को बार बार भोग चुके हैं हरियोनि में, फिर भी वहीं प्रवृत्त हो रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्षुत्रित त्रिधातु भीर इमा मुहूर्देमाना, इन हमारे अंदर जो भूख प्यास इन सब वस्तुओं से, जो कि वायु के धर्म है, हम लोगों का वायु में अटैचमेंट होने के कारण से अपना धर्म मान करके हम हर क्षण क्षण मुंह अर्दे माना बार बार दुखी हो रहे हैं, और इनसे निवृत्ति पाने के लिए बोलते, इसके लिए मेरा मन सीधते बोलते, हे उरुक्रमा मे मना सीधते, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है इन जीवों को देख देख करके। क्या करना चाहिए इन सबको, बोलते हैं कि इनको आपकी शरण में आना चाहिए, आपके विषय में सुनना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तीसरे स्कंद में नौवें अध्याय में छह से लेकर के आप चाहिए तो दसवें श्लोक तक पढ़िए, वो श्लोक बहुत ही अच्छे ब्रह्मा जी की स्तुति है। जीव किस प्रकार से करता है कार्य, कैसे परिवार के व्यक्तियों के नष्ट हो जाने पर शोक करता है, हैं बोलते हैं कि तावत भयम द्रविण गेह सुहिन निमित्तम शोका परिभवा विपुलस्य लोभा, शोक होता है विपुल लोभ उसका परिभव होता है, फिर उसके बाद उसका और विपुल उसके प्रति उसको पाने के लिए लोभ बढ़ता ही जाता है, और हम लोग कभी तृप्त होंगे भी नहीं। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसीलिए दूषित योनियों में जाने से बच सकते हैं, नहीं तो जाना पड़ेगा। यदि जो बचना चाहते हैं निरंतर भगवान की तरफ अपने आप को विमुख करें, प्रकाश की ओर, अंधकार से बचाएं, यही इस श्लोक के माध्यम से और आगे श्लोकों में कपिल भगवान अपनी मां को अवगत कराएंगे, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए सारे श्लोक बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताय गौर हरि प्रेमानंदे।